नमस्कार शिक्षार्थी और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थी और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है रेफरेंस सोर्सेज। जी हाँ, आपकी बुक का लेसन नंबर 7 है और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगू जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम रेफरेंस सोर्सेज।
नमस्कार लर्नर्स, रेफरेंस सोर्सेज, रेफरेंस का मतलब ही यही है जो चीज हम सिर्फ रेफर करते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ हमें उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाता है जहां पर कि मेन इन्फॉर्मेशन है, या एक छोटा सा आंसर छोटी सी किसी भी सवाल का, या कोई स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कि हमारे इस स्टेट में कितने लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, या कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो ये एक तरह की स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है। ये सब हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें सब कुछ रेफरेंस सोर्सेज से मिलती है। ज़्यादातर पहले देखा जाए तो लाइब्रेरीज में फिजिकल रेफरेंस सोर्सेज रखते थे हम, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरीज, यो बुक्स, ये सब हम फिजिकली रखते थे। और अब अगर देखा तो अब हमारे पास ई रिसोर्सेज भी हैं, तो दोनों को हाइब्रिड तरीके से यूज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली भी हम लोग इन्हें यूज करते हैं और फिजिकली भी हम रखते हैं, ताकि हम कन्वीनियंस देखते हैं, जहां पर हमें जिस चीज की जरूरत होती है उसे हम यूज करते हैं। तो रेफरेंस सोर्सेज में हम लोग क्या क्या समझेंगे? पहले तो हम ये समझेंगे रेफरेंस सोर्सेज क्या होते हैं, कौन कौन से रेफरेंस सोर्सेज हैं लाइब्रेरीज में जिन्हें रेफरेंस सोर्सेज कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे इनकी हमें क्या जरूरत है। रेफरेंस सोर्सेज अगर लाइब्रेरी में हम इतना पैसा खर्च करते हैं, इतने बड़े बड़े इंसाइक्लोपीडियाज लेते हैं, डिक्शनरीज लेते हैं इतनी, तो मगर उनकी जरूरत क्या है बेसिकली। फिर हम इनकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे कि रेफरेंस सोर्स जो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन सोर्स से क्या डिफरेंस है, इन्फॉर्मेशन सोर्स और रेफरेंस सोर्सेज को हम अलग कैसे रख करते हैं, रेफरेंस सोर्सेज में कितनी कैटेगरीज है, कैसे इन्हें डिवाइड किया जाता है। फिर हम बात करेंगे डिक्शनरीज के बारे में, तजारस, इंसाइक्लोपीडिया, ईयर बुक, एलमलैक, डायरेक्टरी, जो कि ज़्यादातर हर लाइब्रेरी में होते हैं, जिन्हें हम रेफरेंस सोर्सेज कहते हैं। फिर ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कौन से रेफरेंस सोर्सेज हम यूज़ करते हैं, जैसे हम आजकल फट से गूगल मैप निकालते हैं, इसी तरह से पहले हमारे पास मैप्स होते थे जो कि एकदम प्रिसाइज किया जाता था, छोटे से छोटा बनाया जाता था, पॉकेट में भी रख सकते थे, ताकि हमें कहीं भी जाना हो, किसी अलग जगह जाना हो जो हम नहीं जानते, तो वो मैप हमें मदद करे। अब हमारे पास गूगल मैप्स भी हैं, चार्ट्स होते हैं, ग्लोब्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना है, बाकी बारीक इन्फॉर्मेशन उससे नहीं पता कर सकते थे, पर फिर भी हमें मेन कंट्रीज के बारे में पता चल जाता है, कहाँ से रोड कैसे जाता है, कौन सी रोड्स किससे कनेक्ट करती है, एटलसेस हैं या गाइड बुक्स हैं। गाइड बुक्स जो हैं यही, इन्हीं को ही हम टर्शरी सोर्सेज कहते हैं, जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को पहुंचाने में हमें मदद करता है। फिर हम बात थोड़ी बहुत करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली रेफरेंस सोर्सेज में। तो रेफरेंस सोर्सेज पे सबसे पहले आते हैं हम। रेफरेंस सोर्सेज का क्या मतलब है, जैसे कि हमने अभी बात की, रेफरेंस सोर्सेज का मतलब ही यही है छोटा सा फैक्ट देना, ना कि बहुत इलेबोरेटिव वे में मैं आपको समझाऊं, वो नहीं, छोटा सा फैक्ट दे देना। अब मेरे क्वेश्चन की रिप्लाई करना छोटे सी आंसर में, या कोई स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा किसी का नंबर बताना, यहाँ कितने स्कूल हैं दिल्ली में, हायर सेकेंडरी में कितने हैं या सेकेंडरी कितने हैं, प्राइमरी तक कितने बच्चे निकलते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है। या क्या करता है, ये हमें बैकग्राउंड बता देता है उस इन्फॉर्मेशन की, जो भी किताब मैंने डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिया उससे मुझे ये आइडिया लग गया, हाँ यहाँ पर इतने स्कूल्स हैं, फिर मैं मेन इन्फॉर्मेशन जो मुझे पढ़ना होगा मैं उस डॉक्यूमेंट तक चली जाऊंगी, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट हो गई उस डॉक्यूमेंट तक जहाँ से मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो रेफरेंस सोर्सेज का एक स्टैंडर्ड वर्क होता है, जैसे आप देखेंगे हर तरह की डिक्शनरी जो अलग अलग लोग छापते हैं वो अपना एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, जिसे हम एडिट करके कहते हैं कि इनकी एडिटिंग आप देखेंगे अलग अलग जर्नल्स का अलग अलग तरह का फॉर्मेट क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मेट को अपनाया हुआ होता है कि इसी फॉर्मेट में हम अपनी एडिटिंग करेंगे और इस तरह से हम अपने जर्नल को छापेंगे। तो जब आप एक रेफरेंस बुक को पढ़ने के आदी हो जाते हैं, तो जैसे समझ लीजिए अपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप यूज्ड हो गए, तो आपको हमेशा ये लगेगा मैं ऑक्सफोर्ड से फटाफट ढूंढ सकती हूँ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उनका बेसिक एम क्या होता है, वो एक ही तरह की स्टैंडर्ड को फॉलो कर लेते हैं, काम को कर लेते हैं। और इसमें आपको ज़्यादातर जो हम यूजुअली जो हम बात करते हैं लाइब्रेरी में, वो हम क्या कहते हैं, रेफरेंस बुक्स, तो या ऑनलाइन डेटाबेसिस जो भी मिलते हैं हमें, हम रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें ही रेफरेंस कहते हैं, जहाँ कि आप हर पेज को नहीं पढ़ना है आपको रेफरेंस बुक्स का, मतलब टेक्स्ट बुक की तरह नहीं है, स्टोरी बुक की तरह नहीं है। रेफरेंस बुक्स में हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक्स, एयर बुक्स, एल्मनैक्स, डायरेक्टरीज भी पहले होती थी जो फिजिकली हमारे पास होती थी, किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना है हमें, किसी ऑर्गेनाइजेशन की एड्रेस देखनी है, या कोई भी बायोग्राफिकल सोर्स हमें जानना है या ज्योग्राफिकल सोर्स जानना है, ये सारे रेफरेंस सोर्सेज के ही हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ज़्यादातर जो रेफरेंस सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं वो हम सभी को पता है, वो है डिक्शनरीज और इंसाइक्लोपीडियाज। ये हमेशा आप देखेंगे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा लाइब्रेरी हो, या इनफैक्ट हम इनको घरों में भी रखते हैं, हर किसी के घर में हर तरह की थोड़ी बहुत डिक्शनरीज रहती हैं, इंसाइक्लोपीडियाज भी बेसिकली रखते हैं हम, ताकि जो अगर छोटी सी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रेफर करनी है, देखनी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो हम इंसाइक्लोपीडिया से देख के रेफर कर रहे हैं, वो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है, उसे हमें ये समझने की ज़रूरत नहीं है जो हमने यू इस्तेमाल की है ये वाली इन्फॉर्मेशन, इसकी ऑथेंटिसिटी प्रॉपर होती है। तो हम अगर देखा जाए लाइब्रेरियंस के लिए रेफरेंस सर्विसेज जहाँ वो प्रोवाइड करते हैं, कि रेडी रेफरेंस सर्विसेज में मोस्टली देखा जाए तो इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरीज ही जल्दी से जल्दी यूज़ की जाती है, जो कि अलग अलग तरह के, अगर जिस तरह का भी क्वेश्चन आपके पास आएगा और रेडीली आप फटाफट कैसे, अगर किसी चीज़ का मीनिंग आया रेफरेंस सोर्स में या किसी जगह के बारे में पूछा गया है, तो हम फटाफट इन ही सोर्सेज पे जा सकते हैं। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे इस लेसन में, हम बात करेंगे डिक्शनरीज क्या होती हैं, कितनी तरह की डिक्शनरीज होती हैं, इंसाइक्लोपीडियाज कैसे होते हैं, क्या होते हैं और कितनी तरह के हैं, हैंडबुक्स, ईयर बुक्स, एल्मनैक्स, बायोग्राफिकल सोर्सेज और ज्योग्राफिकल सोर्सेज। तो ये सब हम एक एक करके बात करेंगे इन सब के बारे में। तो आपके पास जो क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आपको अगर कोई ये पूछे कि रेफरेंस सोर्सेज क्या है, ज़्यादातर तो हम रेफरेंस बुक्स कहते हैं, पर रेफरेंस सोर्सेज में क्या क्या आता है, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, हैंडबुक, ईयर बुक, जिसको कि आप वन टाइम रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, किसी चीज़ का नंबर ढूंढने में, किसी चीज़ का मीनिंग ढूंढने में, छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हमें एकदम से हम देख पाते हैं। तो अब हम डिक्शनरी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। डिक्शनरी तो एज सच हर किसी के हाथ में होती है, हर किसी को पता है डिक्शनरी क्या होती है, फिजिकली हमने देखी हुई है डिक्शनरी सभी ने, या अब हम देखते हैं अपने फ़ोन पे भी, हम हर वर्ड का मीनिंग देखते हैं, तो एकदम से हम अपना वर्ड डाल देते हैं, उसका मीनिंग या उसकी प्रोनाउंसिएशन या उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, वर्ड आया कहाँ से, वो सब हम अब अपने फ़ोन पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन डिक्शनरीज भी अवेलेबल है। तो जो ये डिक्शनरी है, ये कहाँ से आया है वर्ड, ये आया है मिडिवल लैटिन से वर्ड डिक्शनेरियम, इसका जो वर्ड था बेसिकली डिक्शनेरियम था, जिसका मतलब है वर्ड्स और फ्रेजेस। अगर आपके किसी भी चैप्टर में, बुक में, आर्टिकल में कोई भी बड़ा वर्ड आ जाता है, फ्रेज आ जाता है कुछ भी, तो उसको मीनिंग अलग से निकालने के लिए, उसका मीनिंग बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं डिक्टियो, विच मीन्स वर्ड, किसी भी वर्ड का मीनिंग देना, ये शुरू हुआ है हमारा मिडिवल लैटिन से, फिर ग्रीक और रोमन्स ने सबसे पहले जो प्रोड्यूस किया डिक्शनरीज। डिक्शनरीज की ज़्यादातर ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि रिसर्च के बाद आप देखेंगे हर चीज़ में चेंजेस आते रहते हैं, ऐड होती रहती हैं टर्म्स, हर साल नई चीज़ें होती, कुछ ऑब्सोलीट हो जाती हैं, कुछ टर्म्स पुरानी हो जाती हैं, तो उन्हें निकाला भी जाता है, जो ऐड हो जाती है, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा हो, उसकी पहले वोकेबुलरी क्या होती है, 10 वर्ड्स की, फिर 50 वर्ड्स की, फिर 100 वर्ड्स की हो जाती है। इसी तरह से डिक्शनरी भी एक छोटे से लेकर के बड़े तक के इस्तेमाल की चीज़ है, जिसमें कि आपको हर तरह के मीनिंग्स पता चल जाते हैं। मॉडर्न डिक्शनरी क्या कहते हैं, हमें किसे कहते हैं, जिसमें जो भी सारे एक ही भाषा में, जैसे अगर कोई हिंदी की डिक्शनरी है तो आपकी हिंदी में ही जो भी वर्ड्स हो, आ से शुरू करके या क से शुरू करके पूरे एंड तक ले जाता है। अगर हमारे पास इंग्लिश है तो ए से लेकर एंड जी पे हो जाएगा। इस तरह जो डिक्शनरीज हैं वो हमें क्या बताती हैं, ए में कितने वर्ड्स हैं, हजारों होते हैं, पर सारे डिक्शनरीज सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं देते हैं। जो इम्पोर्टेंट और कॉमनली यूज होते हैं छोटी डिक्शनरीज में, वही होता है। और जहाँ तक हम डीप चले जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, चीज़ों में और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नज़र आने लगती हैं, तो उतनी भी डिक्शनरीज भी अलग हो जाती हैं। जो ज़्यादा जो डिक्शनरीज हैं वो क्या हमें बताती है, हर शब्द का मीनिंग बताती है, मतलब बताती है, और कई जगहों पे प्रोनाउंसिएशन कि हम इसे कैसे बोलें, अगर कोई भी वर्ड है तो इसे मैं कैसे प्रोनाउंस करूं, जो हिंदी में भी हो सकता है गलत, इंग्लिश में भी गलत हो सकता है। तो जब डिक्शनरी आपको बताएगी, अब आप देखेंगे, अब हम तो सुनते भी हैं फ़ोन से अपने, तो जब वो सुना के जब हमें प्रोनाउंस कराता है किसी भी वर्ड को, तो वो ब्रेक कर करके हमें समझाते हैं, प्रोनाउंसिएशन, तो मतलब ये अलग अलग तीन चीज़ों को जोड़ के एक वर्ड बना है। इसी तरह से वो रीड करता है हमें, बताता है हमें ग्रामेटिकली कहाँ यूज़ किया जाता है, या हमारे पास इनकी कभी कभी पिक्चर्स भी दिखाते हैं। फिर सेम टर्म के कई जैसे होते थे, सेम मीनिंग के वर्ड्स भी होते हैं, सेम वर्ड में वो दूसरा वर्ड भी ऐसा दे देगा, क्योंकि जिसमें अलग मीनिंग होता है, सेम वर्ड के दो मीनिंग वाले, कभी कभी ऐसा भी जो उसके अपोजिट होता है वर्ड, एंटोनियम सिनोनियम, ये सब भी डिक्शनरीज रखती हैं। कई डिक्शनरीज में ये सब भी मिलता है आपको। कई डिक्शनरीज ऐसी डीपली राइट की जाती है जिसमें एटिमोलॉजी का मतलब ये है कि वर्ड ओरिजिनेट ही कहाँ से हुआ है। इस डिक्शनरी का एग्जाम्पल है चैम्बर्स डिक्शनरी, ये हमें हर वर्ड का ओरिजिनल कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुआ। देखो, हमें 2-3 साल से पहले पता ही नहीं था कोविड क्या है, अब आज अगर हम देखेंगे तो कोविड की इतनी बड़ी डिक्शनरी हो गई है, उससे रिलेटेड हमारे फिजिकली देखा जाए तो बायोलॉजी के इतने वर्ड्स नए आ गए हमारे पास, या डिजीज़ से रिलेटेड इतने वर्ड्स शुरू हो गए, किसी को जो चीज़ें नहीं, तो ये सब चीज़ें कहाँ से हो गई, क्योंकि कुछ नया हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, पर वर्ड्स नए आ गए हैं, तो इनका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इन वर्ड्स का कहाँ से यूज़ हुए हैं, कैसे हुए, ये चैम्बर्स डिक्शनरी हमें बताती है। जो और रेफरेंस बुक्स हैं डिक्शनरी जैसी हैं वो है तजारस। तजारस में आप देखोगे वो एक तजारस लाइब्रेरी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, जहाँ पर हम सब्जेक्ट हेडिंग्स देते हैं जिसको देखें। उस तजारस में क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी टाइटल है, टाइटल में एक वर्ड है जिसका मीनिंग काफ़ी सिमिलर है, और हम चाहते हैं इस वर्ड को जानने के लिए 2-3 तरह के वर्ड्स और हो हमारे पास, जिसे हम हेडिंग, फिर सब हेडिंग और हेडिंग्स में डाल देते हैं। जैसे पहले हम कार्ड्स में क्या करते थे, 3-4 कार्ड्स, एडिट कार्ड्स बनाते थे, ताकि अगर आपको सपोज बाय चांस ये एक टर्म याद नहीं आए तो दूसरी टर्म से आप सर्च कर पाएंगे, तीसरी टर्म से सर्च कर पाएंगे। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनिकली भी किसी भी बुक की एंट्री करते हैं, वहाँ भी जब हम सब्जेक्ट हेडिंग दे देते हैं, तो हम कोशिश करते हैं जो सेम टर्म के वर्ड्स हैं वो हम 2-3 वर्ड्स दे दें, ताकि किसी को अगर सपोज नहीं याद आता है पर्टिकुलर वर्ड, तो दूसरे वर्ड से भी वो सर्च हो जाए, पर वो टाइटल वही होगा, तो उसे तजारस कहते हैं। तजारस में काफ़ी सारे वर्ड्स वो दे देते हैं जो सेम वर्ड के रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। इसमें कभी कभी सिनोनिम्स जिसे कहते हैं, एंटोनिम्स जिसे कहते हैं, इनका भी ग्रुप बना देते हैं वर्ड्स का। बेसिकली इसमें डिक्शनरी की तरह ही प्रोनाउंसिएशन होगी, ये आपको मतलब एक वर्ड का जो इससे रिलेटेड होंगे वर्ड्स, जैसे मैंने अभी कहा कोई भी एक शब्द जो हमारे टाइटल में आया है उससे रिलेटेड मैं और शब्द कहाँ से ढूंढूंगी, वो मुझे तेजारस बताएगा। एक से रिलेटेड चार तरह के वर्ड्स बताएगा, वो वर्ड्स मैं अपने सब्जेक्ट हेडिंग्स में क्लिक सकती हूँ ताकि जब सर्चिंग हो जाए बुक्स की या किसी भी तरह के टाइटल की, वो वाला टाइटल किसी भी तरीके से नेट में आ जाए, उनकी सर्च में आ जाएगा, क्योंकि वो क्लोजेस्ट टर्म थी उस टर्म के लिए। तो ये भी तजारस करती है। इसकी क्या एग्जाम्पल है? इसकी है मेरियम वेबस्टर्स तजारस। ये भी बहुत अच्छी एक डिक्शनरी है और बहुत इलेबरेटिव डिक्शनरी है। आप देखेंगे इस तरह की सारी डिक्शनरीज आप ऑनलाइन अपने फ़ोन पे भी डालेंगे, मेरियम वेबस्टर्स तजारस डाल दीजिए, आपको आ जाएंगे। और उसमें हर तरह का वर्ड का मीनिंग, सेम वर्ड के कितने एक जैसे मीनिंग्स, एक जैसे वर्ड्स, वो सब भी दिए गए हैं। फिर हम बात करेंगे इसके बाद डिक्शनरीज में टाइप्स ऑफ डिक्शनरीज, कितनी तरह की डिक्शनरीज होती हैं। हम तो वही डिक्शनरी जानते हैं जो एक हमारे पास आती है, जिसको हम अल्फाबेटिकली पढ़ते हैं, पर डिक्शनरीज में भी बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, मतलब से रिलेटेड तो होंगी होंगी डिक्शनरीज। जैसे रोज़मर्रा का हम हर दिन जो हमें ज़रूरत होते हैं या टेक्निकल वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, या हम कुछ लिख रहे हैं इडियम्स की, राइटिंग्स की, वर्ड फ्रेजेस की, इस तरह की डिक्शनरीज में जो वर्ड्स मिलते हैं हमें, जो नए नए वर्ड्स हैं, साइंटिफिक हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, या कोई भी आप देखेंगे किसी भी सब्जेक्ट में नई चीज़ें आती हैं, आप एजुकेशन में ही देखेंगे कितने सारे वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, ज्योग्राफिकल नेम्स कितने ऐड हो जाते हैं, इस तरह के सारी तरह के वर्ड्स में अलग अलग तरह की डिक्शनरीज होती हैं। इन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के डिक्शनरीज को अलग अलग बनाया गया है। जैसे कि हम लोग कहेंगे जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी, फिर सब्जेक्ट डिक्शनरीज या स्पेशल पर्पस डिक्शनरीज, फिर बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। जनरल लैंग्वेज डिक्शनरीज तो वही डिक्शनरीज हैं जो हम नॉर्मली डिक्शनरी हम देखते हैं, जो हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, हर किसी के पास होती है, छोटी हो बड़ी हो, जो कि एक लैंग्वेज के वर्ड्स को ही ट्रांसलेट करता है, कभी कभी सेम लैंग्वेज में ही मीनिंग दे देता है, डेफिनेशन भी देता है, एक्सप्लेनेशन भी देता है, मगर सेम लैंग्वेज में। अगर हमने हिंदी की देखी तो हिंदी में ही वो वर्ड भी होगा, उसी में ही उसका सरल मीनिंग भी होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी सेम ही लैंग्वेज में। अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही देखा जाएगा। एक हमारे पास डिक्शनरी है जो कॉमनली बहुत यूज होती है, वो है बाईलिंगुअल डिक्शनरी, वो उसमें कमल वुल्के की है, वो इंग्लिश टू हिंदी कर देता है, तो ट्रांसलेशन करने में उससे बहुत ईजी हो जाता है। ये जो डिक्शनरीज हैं ये ज़्यादातर इंग्लिश टू इंग्लिश, फ्रेंच टू फ्रेंच, जर्मन टू जर्मन या कोई भी लैंग्वेज जिस तरह की है, ये इसे जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी कहते हैं। जो ये जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी है ये फिर फर्दर डिवाइड की गई हैं। पहले तो हमने पढ़ा टाइप्स कितने हैं डिक्शनरीज के, फिर इस जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी में भी आगे जाके किस बेस पे इसे डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है, वो है साइज पे और टारगेट ग्रुप पे। साइज मतलब अगर हम छोटी सी डिक्शनरी है तो साइज डेफिनेटली छोटा होगा और नंबर ऑफ वर्ड्स भी बहुत कम होगा। टारगेट ग्रुप तो वो ग्रुप हुआ जो इस डिक्शनरी को इस्तेमाल करेगा। जैसे कि मैं स्कूल में हूँ तो स्कूली बच्चे इस्तेमाल करेंगे, कॉलेज में है तो बड़े ही इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप कहीं और हैं, कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके वर्ड्स बहुत बड़े बड़े यूज होते हैं, तो उस बेस पे इन्हें डिवाइड किया। एक पहला क्या डिवीजन है, कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें हम विस्तार से हर चीज़ को लिखते हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं। फिर अब्रिज्ड होती है, एक मिडिल साइज की डिक्शनरी है जो कॉलेज में डेस्क पे रखा जाता है डेस्क। फिर पॉकेट डिक्शनरी, पहले आपने देखा होगा, आप बच्चों को नहीं मालूम होगा, बहुत छोटी छोटी डिक्शनरीज भी होती थी जो हम पॉकेट में रखते थे, छोटे से कभी किसी भी वर्ड का मीनिंग का जरूरत होगा अपने बैग में होती थी, वो हम यूज़ कर लेते थे। अब हमारे पास ज़्यादातर फोन्स हैं तो हम ऑनलाइन डिक्शनरीज को यूज़ करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव और अनअब्रिज्ड, अनअब्रिज्ड का मतलब है जो छोटा नहीं, जिसको अच्छी तरह से विस्तार से अच्छे से लिखा गया है। तो इसमें क्या कर रहे थे हम, सारे वर्ड्स पीछे जो है, जो स्टार्टिंग में कई वर्ड्स हैं, जो करंट जो नए वर्ड्स आए हैं, मरियम डिक्शनरी थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी एक एग्जाम्पल है। ये तीन वॉल्यूम्स की है और इसमें कितनी एंट्रीज है, 450,000 एंट्रीज हैं। इसका एक ऑनलाइन वर्शन है, आप अपने फोन पे कहीं पर भी कंप्यूटर पे बैठे हैं तो इसको आप देख सकते हैं। आप ऑनलाइन डाल दिए मरियम वेबस्टर्स अनब्रिज्ड ऑनलाइन डिक्शनरी, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी मिलेगी जहां पर हजारों वर्ड्स, मतलब 450,000 एंट्रीज का मतलब है एक एक वर्ड के कितने कितने तरह के, ए पे हजारों वर्ड्स मिलेंगे, बी पे हजारों मिलेंगे, तब जाके ये 450,000 वर्ड्स हो जाते हैं, एंट्रीज हैं इसमें। फिर है अब्रिज्ड कॉलेज डिक्शनरी, डेस्क डिक्शनरी, ये कॉमनली कहाँ पर यूज होती है, ज्यादातर जिसे हम कैरी कर सकते हैं ये रेफरेंस डेस्क पे होती हैं कॉमनली। उसमें वर्ड्स इतने ज्यादा नहीं हो सकते हैं जितने कॉम्प्रिहेंसिव में है। यहाँ पर जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया 2003 का एग्जाम्पल दिया है, मगर इसके और नए एडिशंस भी आए हुए हैं। इसमें 1,65,000 एंट्रीज हैं उस टाइम के हिसाब से, जो नई है नई डिक्शनरीज में ऐड भी हुए होंगे ज़रूर, डेफिनेटली 1,65,000 से ज़्यादा एंट्रीज होंगी। फिर पॉकेट डिक्शनरी जो है एक स्मॉल और क्विक रेफरेंस वाली डिक्शनरीज है, जहाँ आपने खोला उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 से लेकर के 60,000 तक के वर्ड्स जो हैं जो करंटली यूज होते हैं, न्यू वर्ड्स हैं ज़्यादातर पॉकेट डिक्शनरी में, वो वाले वर्ड्स डाले जाते हैं, ताकि जो छोटे मोटे चीज़ें तो मैनेज हो जाती, कभी कभी ऐसा हो जाता कोई वर्ड्स नए आए हुए होते हैं, इनको पॉकेट डिक्शनरी में डाल सकते हैं आप, ताकि आप इसे रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको पिक्स भी दिखाई हुई हैं किस तरह की डिक्शनरीज दिखती हैं, लाइब्रेरीज में आप जाएंगे देखेंगे तो इस तरह की ही दिखेंगी, और अगर आप ऑनलाइन देखना चाहेंगे ऑनलाइन भी फर्स्ट पेज टॉप पेज जो इनका कवर पेज है बिल्कुल ऐसा ही है, खोल के फिर आप देखेंगे, फिर अल्फाबेटिकली अरेंज है। ये जो ज़्यादातर पॉकेट डिक्शनरी स्कूल बच्चों के लिए कॉलेज बच्चों के लिए यूज होती है। फिर चिल्ड्रंस डिक्शनरीज जो है वो क्या करती हैं, वो वर्ड्स रिलेटेड ज़्यादातर जो है करिकुलम से होती हैं, जहाँ के हम जैसे स्कूल लेवल में क्या पढ़ाया जाता है और लैंग्वेज बहुत ही सिंपल साधारण लैंग्वेज में उन्हें लिखा जाता है, ताकि वो बच्चे जो हैं कोई भी भारी भरकम शब्द से ये ना हो कि उन्हें समझ ही ना आए, तो इन डिक्शनरीज को बहुत ही सरल सी लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि बच्चे आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं, समझते हैं। इस पे ज़्यादातर पिक्चर्स भी होती हैं, ताकि जब आप देखेंगे जो इम्पैक्ट पिक्चर का आपके माइंड पे होता है उसे आपको जल्दी से जल्दी समझ आती है, याद रहती हैं चीज़ें। तो ये बच्चों की डिक्शनरीज में मरियम वेबस्टर स्कूल डिक्शनरी है, जो कि 8वीं 9वीं तक क्लास तक के बच्चों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें 1,00,000 वर्ड्स हैं, 1,00,000 इलस्ट्रेशंस हैं, मतलब फोटोग्राफ्स भी हैं, 1,000 फोटोग्राफ्स हैं, 1,500 यूसेज एग्जाम्पल्स हैं, मतलब आप कैसे यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, अगर उन्होंने कोई वर्ड दिया फिर उन्होंने एक सेंटेंस भी बना के दिया है उसके साथ, ताकि आप ये जाने ये शब्द का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है स्कूली बच्चों के लिए, मेरियम वेबस्टर स्कूल डिक्शनरी, जहाँ पर कि और वर्ड्स ऐड हो गए होंगे क्योंकि अब हमारा मटेरियल पहले का बना हुआ है, तो इसमें और भी नई चीज़ें ऐड हुई होंगी हैं। मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड पब्लिशर्स ऑफ अनब्रिज स्टैंडर्ड जनरल लैंग्वेज डिक्शनरीज ब्रिंग आउट अब्रिज डेस्क, जो ज़्यादातर जो पब्लिशर जैसे कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, यही लोग क्या करते हैं, यही लोग ज़्यादातर ये छोटी डिक्शनरीज को निकालते हैं, क्योंकि इन्हीं के पास ज़्यादा डिक्शनरीज में वर्ड्स होते हैं, बड़ी डिक्शनरी में उसमें ये देखते हैं बच्चों के लायक कौन कौन से वर्ड्स हैं, अल्फाबेटिकली उनको निकाल के उसे देखते हैं कि ये तरह इस तरह के वर्ड्स जो हैं क्लास 7, 8, 9 तक यूज़ हो सकते हैं और उनके काम आ सकते हैं, और उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इन डिक्शनरीज में आप देखा जाए तो ये ऐड होते रहते हैं चीज़ें, पुरानी चीज़ें अगर ऑब्सलीट हों कोई वो तो डिलीट भी की जाती है और नए जो है चीज़ें ऐड होती है। तो इस तरह की डिक्शनरीज ज़्यादातर यंग लोगों के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर जो नए वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं देखा जाए वो रेडियो, म्यूज़िक, टेक्नोलॉजी या आपके टेलीविज़न के थ्रू ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो इस तरह के वर्ड्स वो ऐड होते रहते हैं। फिर हम आएंगे दूसरी डिक्शनरी में, सब्जेक्ट डिक्शनरीज। तो सब्जेक्ट डिक्शनरीज कौन सी हैं, जो हमें किसी विषय के शब्दकोश हैं। सब्जेक्ट मतलब अलग है, आपकी फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, और हर किसी शब्द सब्जेक्ट में टर्म्स भी अलग अलग होती हैं। फिजिक्स के जो शब्द हैं वो कहीं और उनका मीनिंग समझना मुश्किल हो जाता है कॉमन डिक्शनरी में, तो इसलिए क्या करते हैं इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस तरह के डिक्शनरीज को निकालते हैं और जो कॉमनली जो वर्ड्स यूज होते हैं जो हम भी अपना जब मटेरियल ट्रांसलेट करते हैं या लिख रहे होते हैं तो उन वर्ड्स को हम यूज कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी ऑथेंटिक वर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी डिक्शनरीज का यूज होता और जो उसमें ट्रांसलेशन हुई होती वो यूसेज भी हम लोग ले लेते हैं। सब्जेक्ट डिक्शनरी जो है आजकल देखा जाए तो ज़्यादातर क्यों इस्तेमाल में है, ज़्यादातर क्यों यूज़ हो रही है हर जगह, क्योंकि हम लोग जो है रिसर्च होती रहती है हर सब्जेक्ट में हर एरिया में, अगर देखा जाए आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, सोशल साइंस, कहीं पर भी आप देखेंगे हर साल रिसर्चेस होती हैं और नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, तो इसलिए हर वर्ड को एक कॉमन डिक्शनरी में डालना और वहाँ पर हमें पर्टिकुलर मीनिंग नहीं मिल सकता है, तो इसलिए हम लोग सब्जेक्ट डिक्शनरीज भी हैं। तो सब्जेक्ट डिक्शनरी की जो यहाँ पर एग्जांपल है वो है मैकग्रॉ-हिल डिक्शनरी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 115,000 टर्म्स हैं, 125,000 डेफिनेशंस हैं और 104 एरियाज जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है के बारे में बात की गई है। तो ये आप डिक्शनरी का नाम भी याद रख सकते हैं और जिसे हम आपको एग्जाम में पूछेंगे कि साइंस और से रिलेटेड किस टर्म में किस डिक्शनरी का नाम आप लिख सकते हैं, तो ये डिक्शनरी ऐसी है जो साइंस से रिलेटेड है। फिर सब्जेक्ट डिक्शनरीज भी हम कहेंगे। सब्जेक्ट डिक्शनरीज में क्या आगे फिर स्पेशल, ये तो सब्जेक्ट डिक्शनरीज की बात हुई है जहाँ तक हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की, फिर हम कहेंगे स्पेशल डिक्शनरीज। स्पेशल डिक्शनरीज का मतलब है हमने जो स्पेशल टाइप जो है स्पेशल टाइप एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ड्स जो है क्लास ऑफ वर्ड्स है या कोई शब्द जो ऑब्सोलीट हो जाते हैं निकल जाते हैं और या कुछ ऐड हो जाते हैं उनमें या एब्रीवेशंस हैं शॉर्ट फॉर्म है किसी भी चीज़ का जिसको हम ब्रेक इन करके मीनिंगफुल बनाते हैं, तो स्पेशल जो है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल डिक्शनरीज में हम लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हैं, प्रोनाउंसिएशन, सिनोनिम, एंटोनिम ये सब का ध्यान रखते हैं, ये दे देते हैं, वर्ड्स में कोटेशन, इडियम्स, प्रोवर्ब्स का ध्यान रखते हैं, ये स्पेशल डिक्शनरीज की एक स्पेशल एक कह सकते हैं क्वालिटी है जो कि आपके हर उस शब्द को ध्यान में रख के बनाया जाता है जो अलग है बाकी सबसे, जहाँ पर लैंग्वेज का ध्यान रखा जाता है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखा जाता है, जो ज़्यादातर कॉम्प्रिहेंसिव होती है, काफ़ी विस्तार में लिखी गई होती है ये वाली डिक्शनरीज। स्पेशल डिक्शनरीज में जो सप्लीमेंट है जनरल डिक्शनरीज के साथ चल जाती, स्पेशल डिक्शनरीज का जो देखा जाए तो क्या है उनका एग्जाम्पल है कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी। कैम्ब्रिज ने ही छापी है इस डिक्शनरी को, ये अमेरिकन या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन को के वर्ड्स को बताती है हमें। अब जब ऑनलाइन आप इस डिक्शनरी पे जाएंगे देखेंगे आप किसी वर्ड को ऑन करेंगे और सुनेंगे तो वो आपको बता देगा। फिर कैम्ब्रिज एडियम्स डिक्शनरी भी है, इन्हें भी याद रखना है आपको कि किस किस तरह के जो स्पेशल डिक्शनरीज में है और क्या आता है। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस, इसमें खाली आपको हर तरह की कोटेशंस मिलेंगी जो इंग्लिश में लैंग्वेज में इंग्लिश कल्चर के हिसाब से जो भी डिक्शन उनकी ज़्यादातर कोटेशंस जो उन्होंने यूज़ की हैं वो इसमें मिलेगी। फिर हम आते हैं इसके बाद स्पेशल के बाद हम बताएंगे आपको बायलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज क्या हैं। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जब आपको ट्रांसलेशन करनी होती है किसी भी चीज़ को, चाहे वो इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश या स्पेनिश से इंग्लिश या रशियन से इंग्लिश, कुछ भी कह लीजिए आप, कोई भी लैंग्वेज जो है हमें जब इन्हें ट्रांसलेशन करना पड़ता है तो हमें मल्टीलिंगुअल या बायलिंगुअल डिक्शनरीज की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर मोर देन टू लैंग्वेजेस हो, कभी कभी हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है और साथ में इंग्लिश भी हो सकता है, तो वो मल्टीलिंगुअल हो गई, या कोई और लैंग्वेज भी लिया हो हमने साथ में तो तीनों लैंग्वेजेस के एक वर्ड के तीनों मीनिंग्स दिए जाते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ करने की लिखने की वजह से ज़्यादातर हमें ट्रांसलेशन में काम आते हैं। इनमें कई जो डिक्शनरी से ज़्यादातर वर्ड्स जो देखा जाए अगर हिंदी में आपको एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें इंग्लिश में ज़्यादा ही मिलते हैं और इन्हें हमें ट्रांसलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। या अब देखा जाए जब हम कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स को ट्रांसलेट करते हैं, वहां पर भी हमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम एज इट इज ले लेते हैं। यहां पर भी हमने जहां हमने ट्रांसलेशन की वहां हमने बाइलिंगुअल को बाइलिंगुअल ही लिखा। अब हम अगर उससे दुभाषाई या तिभाषाई लिखेंगे तो वो आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। कई चीजों को हम एज इट इज भी ले लेते हैं यूसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाला है, उससे कॉमनली समझ भी आ जाए। तो इसमें क्या एग्जाम्पल है बाइलिंगुअल डिक्शनरी में, फ्रेंच टू जर्मनी, जर्मन टू इंग्लिश, समथिंग लाइक ऑक्सफोर्ड प्रेस की डिक्शनरीज है जो कि आपको मिलती हैं। मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज भी है जो कंसाइज ऑक्सफोर्ड स्पैनिश डिक्शनरी है जो कि हमने यहाँ पर 2010 की दिखाई हुई है, जिसमें ज्यादातर वर्ड्स जो है 175,000 वर्ड्स हैं, 200,000 फ्रेजेस हैं जो ट्रांसलेट हुए हैं। ये आपको ये वाली डिक्शनरी ऑनलाइन भी मिलती है। फिर है मल्टी लिंगुअल बायोमेडिकल टेक्निकल डिक्शनरी, ये भी आपको देखें। आप ज्यादातर रिसर्च जो अब तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा रिसर्च होती है, पहले जो ज्यादा से ज्यादा नए से नए सब्जेक्ट्स आते थे ज्यादातर हमें इंग्लिश में ही मिलते थे। अब हम हिंदी में भी इक्वली या संस्कृत में भी इक्वली करते तो स्पेनिश, पुर्तगीज, फ्रेंच, जर्मन, यहां से हमें डिक्शनरीज को, बायोटेक्निकल टर्म्स को लेकर के फिर उन्हें हम अपनी भाषा में यूज कर सकते हैं। फिर हिंदी में हमारे पास क्या है, शब्दकोश इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी। शब्दकोश एक फ्री डिक्शनरी है, आप इसे डालेंगे तो freetranslation.com पे डालेंगे, वहां पर ट्रांसलेट होकर आपके पास आएगा। एक है babylon.com, वहां पर आपको ट्रांसलेट होकर मिलेगा। और शब्दकोश का मतलब है इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है ये। तो यहां तक हमने बात की रेफरेंस सोर्सेज में डिक्शनरीज के बारे में। तो डिक्शनरीज में अब अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि व्हाट आर रेफरेंस सोर्सेज, रेफरेंस सोर्सेज आपको मालूम है जिन्हें हम रेफर करते हैं, डिक्शनरीज हो, एनसाइक्लोपीडिया हो, और बुक हो या डायरेक्टरी हो, ये सारे रेफरेंस सोर्सेज हैं। तो जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी में किस तरह की एग्जाम्पल्स है वो आप बता सकते हैं। स्पेशल डिक्शनरीज कैसे अलग होती हैं जनरल डिक्शनरी से, हाँ स्पेशल डिक्शनरीज में वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो स्पेशली टेक्निकल होते हैं, या कभी कभी ऑब्सलीट हुए वर्ड्स होते हैं, या कोई नए वर्ड्स होते हैं जिनकी हम ओरिजिनेशन कहाँ से पैदा हुआ है, वर्ड प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ये सब हमें स्पेशल डिक्शनरीज में इसका ऑप्शन मिलता है। इसकी एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे वो है एनसाइक्लोपीडिया के बारे में, जिससे कि हम हिंदी में विश्वकोश कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया भी देखा जाए तो एक डिक्शनरी जैसा ही होता है, मगर एनसाइक्लोपीडिया में क्या होता है कि एक बुक नहीं होती। एनसाइक्लोपीडिया ज्यादातर जो है सेट ऑफ बुक्स हैं, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को, कितने सारे ब्रांचेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी हैं अलग अलग फील्ड्स में, उन फील्ड्स की इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स में अल्फाबेटिकली अरेंज किया जाता है। आप देखेंगे तो एनसाइक्लोपीडिया में हम ज्यादातर किस तरह की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, लोगों के बारे में हो, जगहों के बारे में हो, या घटनाओं के बारे में हो, या किसी वस्तु के बारे में हो। ये जब हम कुछ डीप जानना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हम एनसाइक्लोपीडिया को देखते हैं। ये उस तरह की मतलब ज्ञान एरिया जो है, जो भी नॉलेज है, एरिया जो है लिमिटेड एक सब्जेक्ट से ही रिलेटेड रहता है एक सब एनसाइक्लोपीडिया को। इसमें हम सबको मिक्स नहीं करते हैं। जनरल एनसाइक्लोपीडिया में आप देखेंगे ज़्यादातर जो है स्पेशल नॉलेज जो रहती है जनरल रहती है, ऐसे ही लोगों, स्थानों के बारे में हर चीज़ आपको मिलेगी। किसी भी कंट्री के बारे में आप देखना चाहेंगे, स्पेशलाइज्ड इंसाइक्लोपीडिया जो है वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रखते हैं स्पेसिफिक एरिया के बारे में। आर्ट्स का है तो आर्ट्स के बारे में ही पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, साइंस है तो साइंस के बारे में होगी, टेक्नोलॉजी है, सोशल साइंसेज है। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडियाज बनते हैं। सब्जेक्ट मतलब जैसे कि हमें अलग विषयों पे अलग अलग इंसाइक्लोपीडिया मिलते हैं। एक जनरल इंसाइक्लोपीडिया अगर ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बिलीफ्स, आइडियाज, अचीवमेंट्स के बारे में होता, लोगों के बारे में हो सकता है, वो जहाँ वो रहते हैं, किस तरह से रहते हैं। अगर आप सपोज किसी कंट्री में किसी के बारे में जानना चाहेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको यूनिवर्स के कितनी सारे दुनिया में कितने सारे लोग हैं, मगर हर कंट्री के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन, कौन सी लैंग्वेज कैसे यूज होती है, कहाँ पर किस तरह का खाना पीना होता है, इस तरह से भी इंसाइक्लोपीडियाज हमें मिलते हैं। ये हमें डिक्शनरी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। कहीं कहीं इंसाइक्लोपीडियाज तो ऐसे हैं, एक एक टॉपिक पे, एक एक वर्ड पे हमें कहीं कहीं पेजेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है। बहुत ही बारीक लिखा जाता है उनमें और बहुत पतले पतला फॉन्ट भी होता है, मगर इनके वॉल्यूम्स जो हैं काफ़ी सारे वॉल्यूम्स होते हैं, 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, इस तरह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग चीज़ों के लिए दी जाती है। इंसाइक्लोपीडिया में ज़्यादातर हम लोग किसके बारे में जानते हैं, कौन, कहाँ, कैसे और क्यों है ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हमें इंसाइक्लोपीडिया में मिलती है। जनरल नॉलेज जो भी किसी भी टॉपिक के बारे में जनरली जो चलता है, बिब्लियोग्राफीज या कोई जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है किसी टॉपिक पे। तो अगर सपोज हम एक एग्जांपल इसमें ऐसा कोट कर सकते हैं कि अगर मुझे कुछ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेगा, मैंने कंप्यूटर वाला सी वाला निकाल लिया एनसाइक्लोपीडिया, उसमें मैं पहुंच के कंप्यूटर पे पहुंच के बिल्कुल डिक्शनरी की तरह, जैसे मैं डिक्शनरी में ढूंढती हूँ वहां पर भी मैं वहां पर कंप्यूटर में पहुंच के, मगर मुझे कंप्यूटर के बारे में जाना है कि ये बता पूछ देखना है कंप्यूटर बना कैसे, कब और किसने बनाया, और इस कंप्यूटर में हम काम कैसे कर सकते, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है लोगों के लिए, तो ये हमें हर छोटी वो चीज बताते हैं इंसाइक्लोपीडिया। इसमें कंप्यूटर के बारे में जितना मैक्सिमम हो सकता उतनी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं एनसाइक्लोपीडिया में वो डिपेंड करता है आपको किस तरह का, वो कभी कभी एक छोटा अनुच्छेद भी हो सकता है, आधे पेज का, एक एक पेज का भी हो सकता है, कभी कभी बहुत सारे काफी सारे पेजेस का भी होता है। तो ये सारा डिपेंड करता है हमारा, हम किस तरह का एनसाइक्लोपीडिया यूज कर रहे हैं, किस तरह के एनसाइक्लोपीडिया को हम रेफर कर रहे हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया सिंगल वॉल्यूम भी है, मल्टी वॉल्यूम भी है, और जो आर्टिकल्स का स्टैंडर्ड एनसाइक्लोपीडिया जो लिखा जाता है, उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया में आपने जो सबमिट किया है अपना आर्टिकल, उसके बाद जो उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बना होता है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके मुताबिक अपने तरीके से वो उसे एडिट करते हैं उस आर्टिकल को, उस इन्फॉर्मेशन को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक तरह की इन्फॉर्मेशन जो बनाई है उसमें जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, वो सब यूनिफॉर्मिटी में आ जाए, ताकि जैसे मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड की आप डिक्शनरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एकदम से आपको समझ आ जाएगा हाँ इसी स्टैंडर्ड से। इसी तरह से जब एनसाइक्लोपीडियाज बनते हैं, जब हमने कोई भी आर्टिकल एनसाइक्लोपीडिया में दिया, वो हमारे आर्टिकल को रीफ्रेम करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके पास एडिटर्स उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, पिक्चर्स डायग्राम्स डालनी है, किस तरह की पिक्चर्स डालनी है, कैसे कॉन्सेप्ट लिखते हैं, और हेडिंग किस तरह की और सब हेडिंग्स भी कैसे, वो सभी कुछ फिर वो अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया एक स्टेप है डिक्शनरी से आगे जाने के लिए। और होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू वेरी मच।